وهو الذي ينشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. سچ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے. کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کہ پھر ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے پہلے سے یہ وعدے ہوتے چلے گئے. کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتلاؤ اگر جانتے ہو. فوراً جواب دے دیں گے کہ اللہ کی. کہہ دیجئے پھر تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ان سے پوچھئے ساتوں آسمانوں کا اور بہت بڑے بازمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اگر تم جانتے ہو تو لاؤ. یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ بلتیناہم بالحق. حق یہ کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور بے شک وہ جھوٹے ہیں. نہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا. جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے. عالم الغیب والشہادہ. وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے برتر ہے. یہ تھی آیت نمبر 78 سے 92، آیت نمبر 78 سے 92. اس کا عنوان لکھیں اللہ کی توحید کی گواہی کائنات دیتی ہے. پورے اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ تھا جو اس نے ہم کو دی، لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے. اس کے برعکس دنیا کے اندر باقی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتی اور اس کے حکموں کے مطابق جیتی ہیں. اس حصے سے ہائی لائٹ کریں گے ہم آیت نمبر 68. هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. یہ تین چیزیں، کان، آنکھیں اور دل، اس کا شکر کیا ہوتا ہے؟ کانوں کو اس کام پہ لگا دیا جائے جو کانوں کو اللہ کی نگاہوں میں قابل قدر کر دے، یعنی ہر وہ کام کروا لیں کانوں سے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ کہ آنکھوں سے ہر وہ چیز دیکھی جائے جس چیز سے کہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور اسی طرح دل میں اللہ کی محبت کا پیدا کیا جانا دل کا شکر ادا کرنا ہوگا. جب ہم اپنی ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ہماری زندگی کچھ ایسے کھیل تماشوں کی نظر ہو جاتی ہے جو ہمیں حق کی طرف آنے نہیں دیتی، تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے آگے تک سورت کے آخر کی آیات بہت ہی قابل توجہ ہیں، اور ہم سب ان کو پڑھتے ہوئے اپنا بھی محاسبہ کریں گے. اور اگر کوئی شخص ایسی حالت کا شکار ہو چکا ہو تو اس کے لیے اپنے دل میں تڑپ محسوس کرتے ہوئے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ لوگوں کو اس غفلت کے اندھیروں سے نکال کر اس آنے والی کل کے لیے تیار کروا سکے. قُل رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ. آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ ان کو دیا جا رہا ہے. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو اے رب تو مجھے ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا. ہم جو کچھ وعدے ان کو دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں. کریں کیا؟ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ. برائی کو اس اچھے طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہے، اور جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی اس سے واقف ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. اور دعا کریں کہ میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے. اپنے آپ کو تصور میں رکھیں، کیوں واپس جائیں؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کر لوں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کو یہ کہنے والا ہے. ان کے پیچھے تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. پھر جب سور پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ. جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. हो, जिनके तराजू का पल्ला हल्का हो गया, ये हैं वो जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया, जो हमेशा के लिए जहन्नम में चले गए। तलफहु वुजूहहुम अन्नार वहुम फीहा कालिहून, इनके चेहरों को आग झुलसती रहेगी और वो वहां बदशकल होंगे। फिर इनसे कहा जाएगा, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या मेरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत ना की जाती थी, फिर भी तुम इन्हें छुटलाते थे। कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना वकुन्ना कौमद्दालीन, कहेंगे हमारे परवरदिगार हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई, वाकई हम थे ही गुमराह। रब्बना खरिजना मिन्हा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून, ए हमारे परवरदिगार हमें यहाँ से निजात दे, अगर अब भी हम ऐसा ही करें तो बेशक हम जालिम हैं। अल्लाह ताला पुकारेगा, कालखसऊ फीहा, इसी में फटकारे हुए पड़े रहो। वला तुकल्लिमून, और मुझसे कलाम न करो। क्यों इतना गुस्सा क्यों है अल्लाह को, इनका जुर्म क्या था? इन्नहु काना फरीकु मिन इबादी यकूलून, मेरे बंदों की एक जमात थी जो बराबर यही कहती रही कि हमारे परवरदिगार हम ईमान ला चुके हैं, तू हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तू सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। लेकिन तुम इन्हें मजाक में ही उड़ाते रहे, यहाँ तक कि इस मशगले ने तुमको मेरी याद भी भुला दी और तुम इनसे मजाक ही करते रहे। मैंने आज इन्हें इनके इस सबर का बदला दे दिया कि वो अपनी मुराद को पहुंच चुके। काल कम लबिस तुम फिल अर्दी अदद सिनीन, अल्लाह तला पूछेगा कि तुम जमीन में बा एतबार बरसों के गिनती के किस कदर रहे। कालू लबिस ना यौम नौ बाद यौम, वो कहेंगे एक दिन या इस दिन से भी कम, गिनती गिनने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह तला फरमाएगा, फिल वाके तुम वहां बहुत ही कम रहे हो, ऐ काश तुमने ये पहले ही जान लिया होता। अफहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, अफहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये गुमान किए हुए हो कि हमने यूं ही तुम्हें बेकार पैदा किया और ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए ही ना जाओगे। अल्लाह सच्चा बादशाह है, वो बड़ी बुलंदी वाला है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही बुजुर्ग अर्श का मालिक है। जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारे जिसकी कोई दलील उसके पास नहीं, बस इसका हिसाब तो इसके रब के ऊपर है, बेशक काफिर लोग निजात से महरूम है। वकुर रब्बिग़फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, और कहो कि ऐ मेरे रब तू बख्शिश और रहम कर और तू सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबानी करने वाला है। बहुत ही खूबसूरत आयत है। ये थी आयत नंबर 93 से 118, 93 से 118। इसके उनवान लिखेंगे हम, और असल में ये आयतें तदब्बुर वाली आयतें हैं। वो लोग जो दुनिया में अपनी मनमानियां करके चले गए उनका हाल क्या होगा? आयत नंबर 93 से 95 का टॉपिक लिखिए कि अल्लाह जब तेरी पकड़ आए तो मुझको बचा लेना। दुनिया में लोग घुले मिले रहते हैं, अच्छे काम करने वाले भी बुरे भी, और खास तौर में अगर आज के तनाजुर में देखे तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मिलके रहते हैं, बाद दफा रंग ढंग भी मिलने लगते हैं, पसंद नापसंद मिलने लगती है। लेकिन इन आयतों में एक ईमान वाला अल्लाह से ये दुआ करता है कि अल्लाह अगर तू जालिमों यानी मुशरिकों को या नाफरमानों को उनके किसी जुर्म की बुनियाद पे पकड़ने लगे तो मुझे उधर से निकाल देना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी मांगा करते थे, जिसका खुलासा ही क्या था कि अल्लाह जब किसी कौम पे तो अपनी पकड़ का इरादा करे तो मुझे तू उधर से फितने में डले बगैर निकाल दे। और मैं समझती हूँ कि हम सबको तो ये दुआ बहुत ही मांगने की जरूरत है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है आयत नंबर 96 से 98 के बीच में, इसका उनवान क्या है? बुराई के जवाब में भलाई करो, अगर दिल ना चाहे तो शैतान से अल्लाह की पनाह में आओ। बहुत ही खूबसूरत असूल है, इत्फा बिल्लती ही अहसन उस्सैया। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में किसी इंसान से आपको दुख ना पहुंचे, और ये भी फिर हकीकत है कि आपसे भी लोगों को दुख पहुंचता होगा, कभी जानते बूझते कभी अनजाने में, कभी दानिस्ता कभी नादानिस्ता। ऐसे हालात में बेहतरीन अमल क्या है कि जहां कभी कोई बुराई हो जाए, बुरा मामला हो जाए, तो उसको अच्छे मामले में बदल लो, निजी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में और दीन की जिंदगी में। ये बेहतरीन असूल है। हमारे यहाँ क्या सिखाते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। इस्लाम क्या कहता है कि ईंट के जवाब में फूल फेंको। और ये कहां से सीखा? दरख्त से सीखा। बस दफा लोग आपसे जल के हसद करके भी आपके ऊपर ताने फेंकते हैं, उस वक्त आपको दरख्त की मिसाल बनना चाहिए। अब देखिए कि पत्थर किस दरख्त पे पड़ते हैं? जिस पे फल लगता है ना। कभी किसी कांटों वाले दरख्त पे भी किसी ने पत्थर फेंके? अगर आपको कोई पत्थर मारे ना और आप वाकई सही काम करें तो उस वक्त सोचा करें किसका मतलब कुछ फल है। आपने उस वक्त क्या करना है, उस पत्थर के जवाब में फल फेंकना है, और वो फल क्या है, आपके आला इखलाक का फल, दुआओं का, तानों के जवाब में दुआएं दें, और इससे आप देखेंगे कि दीन बहुत जल्दी फैलेगा। आम लोगों को तो इस इखलाक की जरूरत होती है, लेकिन दीन फैलाने वालों को इसकी बहुत ही जरूरत है। उसके बाद अगला टॉपिक आयत नंबर 99 से 104 के बिटवीन में से हम लेंगे, और वो क्या है, आंख बंद नहीं हुई खुली है। हमारे यहाँ एक जुमला बोलते हैं, फलां की आंखें बंद हो गई, कहते किस चीज का इस्तेआरा है कि वो फौत हो गया, हालांकि हकीकत क्या कि मौत की सूरत में आंखें बंद नहीं होती, खुलती हैं। वो हकायक दिखने लगते हैं जो आज नहीं दिख रहे। मरने वाला मरते ही फरिश्तों को देखने लगता है, फिर उसको उसके जन्नत का या जहन्नुम का मुकाम दिखाया जाता है, वो अपने असल को देखता है। ऐसे वक्त में एक इंसान जिस कैफियत से गुजरता है, उसको अल्लाह ताला ने यहाँ बड़े खूबसूरत लफ्जों में बयान किया, उस वक्त ये हसरत है कि लाली क्या कहा, रब्बिर जेओन। इसमें हाईलाइट कर लीजिए आयत 99 को, रब्बिर जेओन, अल्लाह एक चांस और दे दे, बस एक दफा और जाना चाहता हूँ। क्यों, लाली आमल सालेहन बीमा तरक, तो वो काम करूं जो छोड़े हुए थे। आज कितने लोग हैं जो कितनी नेकियों के इरादे रखते हैं, लेकिन पोस्टपोन नेकियों की तादाद करने वाली नेकियों से ज्यादा होती है। नमाज शुरू करेंगे, जरा गर्मी आ ले, क्योंकि सर्दी में वजू करना मुश्किल है। अपने आप को ठीक तरह से ढांपेंगे, छुपाएंगे, जरा सर्दी आ ले, क्योंकि गर्मी में दम घुटता है। जरा करेंगे ये काम, जरा हज करके आए। अच्छा, शादी हो ले तो सारी चीजों से तौबा, किसको पता है कल किसने देखी। ऐसे लोगों को उनकी मौत के वक्त जो फरिश्तों की तरफ से डांट डपट होती है, उसका अल्लाह ताला ने यहाँ बड़ा खूबसूरत एक मंजर खींचा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके मुंहों को आग खा लेगी। लफ्ज काले हून को हाईलाइट कर लें आयत 104 में। अब्दुल्ला बिन मसूद से किसी ने इसका मतलब पूछा था कि ये कलूख क्या है, तो कहने लगे कि क्या तुमने बकरे की भुनी हुई सिरी नहीं देखी। कहा देखिए, कहा यही है कलूह, जहन्नुम की आग जहन्नमियों के चेहरों को इस तरह काला कर देगी, खाल जल जाएगी, दांत बाहर निकल जाएंगे, और जैसे देवरियां चढ़ी हुई कैफियत होती है, ये कैफियत उनकी बन जाएगी। और अगले हिस्से में से आप टॉपिक लिखेंगे आयत 0105 से 108, ये टॉपिक क्या है कि तुम्हारे सामने हक आया था, तुमने उसको ठुकरा दिया। ऐसा होता है कभी? आप देखिए कि कल वहां जाके जिस बात को मानना है, ये कुरान आज उसकी जिंदा तस्वीर है। जन्नत के जहन्नुम के कितने मंजर हमारे सामने आते हैं, लेकिन क्या हम इन मनाजिर को देखते हैं? क्या इसको अपनी खुली आंखों से देखते हैं? आज जिसने कलाम से ये बातों को सुन के अपने आप को उस दिन के लिए तैयार ना किया, तो फिर उसका हाल क्या है कि वो शख्स कल जाके कहे कि मुझे वापिस आने दो, तो उसकी मिसाल तो उस तालिब इल्म की है कि जो इम्तिहान का पर्चा आउट होने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद कहे कि मुझे एक बार फिर इम्तिहान की तौफीक दो। अगला हिस्सा 109 से 111, इसका टॉपिक लिखेंगे आखरत का इनाम सबर की कीमत पर। ये है बात, वहां वही कामयाब होगा जो दुनिया में सबर करेगा, और दुनिया की इतनी चमक दमक के ऊपर अपने आप को जमा के रखना थोड़े पे, ये भी सबर है, कनात भी सबर है, दूसरे की गलत बात के जवाब में अच्छी बात कहना भी सबर है। इस हिस्से में से एक लफ्ज हाईलाइट करेंगे आप, जो अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ इस्तेमाल किया, और वो क्या है, सिहरिया। आयत नंबर 110 के अंदर है, फतखस्तुमूहुम सिहरिया, तुम उनका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि तुमको मेरी याद भी भूल गई। हमने तो कभी किसी दीनदार का मजाक नहीं उड़ाया, किसी की दाढ़ी का, किसी के हिजाब का, किसी के पर्दे का। हाल क्या है कि दूसरे तो बाद में मजाक उड़ाएंगे, हम खुद ही ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं और उनको न जाने क्या क्या नाम देते हैं। ऐसे मजाक उड़ाने वालों को कल अल्लाह ताला वहां खूब अच्छी तरह पकड़ेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में ना करें। ये पिछली आयतों में जो लफ्ज इख्सा आया ना, कि अल्लाह ताला ने कहेगा हुस का लख्सा, कुत्ते को धुतकारने को इख्सा कहते हैं। कभी आप देखेंगे गुजरते हुए कुत्ता पीछे पड़े ना, तो लोग पत्थर उठा के फेंकते हैं, उस इस कैफियत को इख्सा कहते हैं। अल्लाह ताला इन जहन्नमियों के लिए क्या कहेगा, काल अख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, पड़े रहो, धुतकारे पड़े रहो इस जहन्नम में और मुझसे कलाम ना करो। अल्लाह ताला इस बुरे हिसाब से इनको महफूज रखे हम सबको। अगला टॉपिक है आयत नंबर 112 से 114 में, 112 से 114, इसका उनवान है दुनिया की जिंदगी कुछ भी न थी आज मालूम हुआ। पीछे हमने एक जगह पढ़ा कि जब लोग वहां देखेंगे तो पूछा जाएगा तुम दुनिया में कितने दिन रहे, तो वो कहेंगे 10 दिन, और यहाँ क्या है, एक दिन या उसका भी कुछ हिस्सा। एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत इसको वाज़े करती है। एक शख्स जो सारी जिंदगी दुनिया में दुखों में रहा, तकलीफों में रहा, अल्लाह के दीन पे जमा रहा, हक के साथ रहा, लेकिन मुसीबतें आती रही, सबर करता रहा कि कल अजर मिलेगा। कल क़यामत के दिन जब वो मैदाने महशर में होगा, अल्लाह ताला उसको उसकी मुसीबतों और दुखों पे बदला देने वाले होंगे कि फरिश्तों को कहेंगे कि जाओ पहले इसको दूर से जन्नत दिखा के लाओ कि मैंने इसके लिए क्या तैयार किया है, फिर इसको इसका बदला देंगे। जब वो बंदा जाएगा दूर से एक जन्नत की झलक दिखा के उसको वापस लाया जाएगा, कहा जाएगा कि बता तुझे क्या क्या गम आए थे, क्या तकलीफें आई थी। वो कहेगा अल्लाह तेरी जात की कसम मैंने जिंदगी में कभी गम का नाम नहीं सुना। खुलासा है ये हदीस का। इसके बरक्स वो शख्स जिसको दुनिया में खूब मौज मस्ती ऐश थी और रब को फरामोश किया हुआ था, भूला हुआ था, कल उसको वहां पता चलेगा कि आज तो मेरी सख्ती आने वाली है, सारी मस्तियां आज निकलेंगी। लेकिन इससे पहले कि उसको उस पे पकड़ा जाए, उसको दूर से जहन्नुम की एक झलक दिखाई जाएगी और कहा जाएगा अब बता क्या क्या नेमतें मिली थी, तो कहेगा अल्लाह तेरी जात की कसम मैंने तो कभी नेमत का नाम नहीं चखा। ये है ये दुनिया, एक जायका। अब 10 अच्छी चीजें खा लेना, एक कड़वी चीज खा लें तो पिछला सारा जायका खत्म हो जाता है। मौत का जायका पिछले सारे जायकों को खत्म करके असल जायके पे आपको ले आएगा जिस पे हमने जिंदगी गुजारी होगी। आयत नंबर 115 से 118 का टॉपिक लिखेंगे, क्या होना चाहिए। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। लिखिए दो सवाल, हर एक को जवाब देना है, और इस आयत को आप हाईलाइट भी कर लें। अल्लाह ताला हर बंदे से दो सवाल जरूर पूछेगा, और खास तौर पे वो जिन्होंने गफलत की जिंदगी गुजारी, कि क्या तुमको किसी मकसद के साथ नहीं भेजा था और क्या तुम वापस ना लौटाए जाओगे। अगर दुनिया में हर बंदा और हम कम अज कम इस कुरान को पढ़ने वाले इस वक्त ये दो सवाल अपने नोट्स में लिख लें कि मैंने खुद से पूछने हैं। पहला मकसद क्या है कि मैं दुनिया में क्यों पैदा की गई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है, और दूसरा क्या वापस नहीं लौटना। ये दोनों लफ्ज इंशाल्लाह हमारी जिंदगी को एक नई सोच देंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बेमकसद जिंदगी से निकाल कर बा मकसद जिंदगी गुजारने वाला बना दे। बाकी रहने वाली चीजों को पाने के लिए फना होने वाली चीजों को पीछे डालने की तौफीक अता फरमाए। सूरत अल मोमिनून पूरी हुई, नाम पे भी गौर कर लें, ये मोमिनों की सूरत थी और मोमिन ही इससे फायदा लेंगे। सूरत बकरा के आगाज में तीन लोगों का तذکرہ है, मुत्तकी या मोमिन, मुनाफिक और काफिर। कुरान पाक में तीनों मौजूआत पे सूरत है, ये सूरत मोमिनून है। 28वें पारे में सूरत मुनाफिकून आएगी और 30वें पारे में अल काफिरून आएगी। तो हम सबको भी अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ होना चाहते हैं। इसके बाद एक ऐसी सूरत है कि जो आपकी जिंदगी को रोशनियों से भर देगी, सूरत अन्नूर।